एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
ज्ञान गोष्ठी में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं मेजबान एक
और मैं हूं मेजबान दो।
आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और जरूरी किताब पर बात करने वाले हैं।
हाँ, कौन सी किताब?
डोना जे ड्रकर की फर्टिलिटी टेक्नोलॉजी, अ सोशल एंड हिस्टोरिकल ओवरव्यू।
ओह हाँ, फर्टिलिटी टेक्नोलॉजी, ये विषय तो आजकल बहुत चर्चा में है ना, मतलब ये तकनीकें जो हैं।
बिल्कुल, और इसीलिए ये जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ आप कह सकते हैं बच्चे पैदा करने में मदद करने वाली चीजें नहीं हैं।
हाँ, उससे कहीं ज्यादा हैं।
एग्जैक्टली, ये असल में हमारे परिवार, हमारे रिश्तों, समाज को लेकर जो हमारी सोच है ना, उसको ही बदल रही हैं।
सही बात है, ये सिर्फ लैब में होने वाली मतलब साइंटिफिक प्रक्रियाएं नहीं हैं, इनमें उम्मीदें हैं, सपने हैं।
हाँ, पर साथ ही कई नैतिक सवाल भी हैं और समाज में एक तरह की नई असमानताएं भी पैदा हो सकती हैं जिसका शायद हमें अंदाजा भी ना हो।
तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम समझें कि यह फर्टिलिटी टेक्नोलॉजी कैसे विज्ञान के पन्नों से निकलकर हमारी जिंदगी का, हमारे समाज का एक अहम हिस्सा बन गई
और इसका असल मतलब क्या है।
हाँ, तो शुरुआत करते हैं लेखिका से, डोना जे ड्रकर। क्या खास बात है उनके नजरिए में?
देखिए, ड्रकर असल में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और चिकित्सा के इतिहासकार हैं। ये कोई डॉक्टर या साइंटिस्ट नहीं बल्कि एक हिस्टोरियन है।
अच्छा, इतिहासकार, तो उनका नजरिया अलग होगा।
हाँ, वो चीजों को एक बड़े मतलब सामाजिक और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखती हैं। उनका खास ध्यान इस बात पर रहा है कि जेंडर यानी लिंग, हमारा शरीर और प्रजनन स्वास्थ्य, ये सब कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और समाज इन्हें कैसे देखता आया है वक्त के साथ।
तो इसका मतलब ये हुआ कि वो सिर्फ ये नहीं देखती कि IVF कैसे काम करता है, बल्कि ये भी समझने की कोशिश करती हैं कि
हाँ बिल्कुल, कि इस तकनीक का समाज पर क्या असर पड़ रहा है ना, जैसे महिलाओं पर इसका क्या खास असर है, परिवार की परिभाषा कैसे बदल रही है।
हाँ हाँ, वही।
उनका नज़रिया इंटरडिसिप्लिनरी है, मतलब वो कई अलग अलग फील्ड जैसे हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, मेडिसिन, सबको मिला के इस विषय को देखती हैं। इसी वजह से वो सिर्फ तकनीकी जानकारी नहीं देती बल्कि ये भी बताती हैं कि ये तकनीकें समाज के लिए क्यों मायने रखती हैं और कैसे जो चीज़ें कभी आप सोचिए बहुत अजीब या अप्राकृतिक लगती थीं।
हाँ बिल्कुल,
वो आज आम जिंदगी का हिस्सा बन गई हैं। वो किसी का पक्ष नहीं लेती, वो बस एक विश्लेषक की तरह हमें पूरी कहानी समझाती है।
अच्छा, तो फिर ये किताब फर्टिलिटी टेक्नोलॉजी किस बारे में है, इसका यूं समझिए निचोड़ क्या है?
देखिए, संक्षेप में कहें तो ये किताब सहायक प्रजनन तकनीकों की मतलब ARTs की दुनिया की एक गहरी पड़ताल है। IVF, सरोगेसी, एग फ्रीजिंग, जेनेटिक टेस्टिंग, ये सब इसमें शामिल है। लेकिन किताब का मुख्य तर्क सिर्फ इन तकनीकों को समझाना नहीं है।
तो फिर क्या है मुख्य तर्क?
ड्रकर का सबसे बड़ा तर्क ये है कि फर्टिलिटी टेक्नोलॉजी सिर्फ मेडिकल औजार नहीं है बल्कि ये एक जटिल, एक कॉम्प्लेक्स सामाजिक तकनीकी प्रणाली, सोशियो टेक्निकल सिस्टम है।
सामाजिक तकनीकी प्रणाली, ये थोड़ा भारी शब्द लग रहा है।
हाँ, सुनने में लगता है, पर इसका मतलब सीधा सा है कि ये तकनीकें समाज से अलग नहीं है। समाज की सोच, उसके मूल्य, कानून, पैसे का खेल, ये सब मिलकर तय करते हैं कि कौन सी तकनीक विकसित होगी, कैसे इस्तेमाल होगी और सबसे जरूरी, किस तक पहुंचेगी।
अच्छा,
और फिर ये तकनीकें वापस समाज को बदलती हैं। ये एक टू वे प्रोसेस है।
अच्छा, मतलब तकनीक और समाज एक दूसरे को लगातार बना और बदल रहे हैं, जैसे शायद IVF का विकास सिर्फ वैज्ञानिकों के मेहनत का नतीजा नहीं।
नहीं, बिल्कुल नहीं,
बल्कि समाज में बच्चे की बढ़ती चाहत, परिवार की बदलती सोच, इन सब का भी नतीजा था।
बिल्कुल सही पकड़ा। हाँ हाँ बिल्कुल, यही ड्रकर समझाना चाहती हैं और किताब इसी बड़े सवाल का जवाब ढूंढती है कि कैसे ये तकनीकें जो कभी इतनी विवादास्पद थीं, आज एक मेनस्ट्रीम अरबों डॉलर का ग्लोबल उद्योग बन गई। और इस बदलाव के लोगों पर, परिवारों पर और पूरे समाज पर क्या गहरे और अक्सर मिले जुले नतीजे हो रहे हैं।
चलिए, तो अब इस किताब की गहराई में उतरते हैं। चैप्टर दर चैप्टर जाने के बजाय शायद हम इसके मुख्य विषयों पर बात करें जो बार बार उभर कर आते हैं, क्या ख्याल है?
हाँ हाँ, ये बेहतर रहेगा। तो एक बड़ा विषय है कि कैसे समय के साथ बांझपन या इनफर्टिलिटी को देखने और समझने का नजरिया बदला है।
अच्छा,
ड्रकर बताती हैं कि कैसे प्राचीन काल से लेकर आज तक बांझपन को कभी श्राप माना गया, कभी औरत की कमी, और अब इसे एक मेडिकल प्रॉब्लम की तरह देखा जाता है।
हाँ, मेडिकलाइजेशन जिसे कहते हैं।
बिल्कुल, चिकित्साकरण यानी जीवन की एक स्थिति को बीमारी बना देना।
और इसी मेडिकल नजरिए ने ही शायद इन तकनीकों के लिए रास्ता खोला, जैसे IVF, ICSI वगैरह। किताब इनके बारे में क्या बताती है? क्या ये सिर्फ तकनीकी समाधान है?
ड्रकर इन तकनीकों के काम करने का तरीका तो बताती हैं, जाहिर है, लेकिन उनका असली जोर इस बात पर है कि ये तकनीकें सिर्फ समाधान नहीं बल्कि नए सवाल भी लाती हैं।
जैसे
डोनर शुक्राणु या अंडाणु इस्तेमाल करने पर बच्चे की पहचान का सवाल, और सबसे महत्वपूर्ण, इन प्रक्रियाओं का महिलाओं पर पड़ने वाला शारीरिक और भावनात्मक बोझ।
हाँ, ये तो मैंने सुना है, ये आसान नहीं होता।
बिल्कुल नहीं, ये कोई आसान सफर नहीं होता। कई बार महीनों सालों तक इंजेक्शन, दवाइयाँ, उम्मीदें और फिर निराशाएं, ये सब चलता रहता है।
और क्या ये तकनीकें सबके लिए उपलब्ध है? मुझे लगता है ये एक बड़ा मुद्दा होगा।
बिल्कुल, और यही किताब का एक और बहुत महत्वपूर्ण विषय है, असमानता और स्तरीकृत प्रजनन।
स्तरीकृत प्रजनन, इसका क्या मतलब हुआ?
ये एक और थोड़ा अकादमिक सा शब्द है, पर इसका मतलब बहुत गहरा है। सीधी सी बात है कि समाज जाने अनजाने में ये तय करता है कि किसके लिए माँ बाप बनना आसान होगा और किसके लिए मुश्किल, कौन इन महंगी तकनीकों का खर्च उठा सकता है।
हाँ, ये तो है, बहुत महंगी है ये।
बिल्कुल, किसके पास अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, कहाँ बीमा इसे कवर करता है, कहाँ नहीं, ये सब मायने रखता है।
तो ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, क्या इसमें सामाजिक भेदभाव भी शामिल है?
हाँ, ड्रकर यही दिखाती हैं, ये सिर्फ आर्थिक असमानता नहीं है, कई बार सामाजिक पूर्वाग्रह भी भूमिका निभाते हैं। जैसे, क्या सिंगल महिलाओं या समलैंगिक जोड़ों को उतनी ही आसानी से ये सुविधाएं मिलती हैं?
ये सोचने वाली बात है।
या फिर किस जाति या वर्ग के लोगों के लिए ज्यादा सुलभ है? ड्रकर बताती हैं कि कैसे ये तकनीकें समाज में पहले से मौजूद दरारों को और गहरा कर सकती हैं।
और वो प्रजनन पर्यटन वाली बात?
हाँ, रिप्रोडक्टिव टूरिज्म। लोग इलाज के लिए दूसरे देशों में जाते हैं क्योंकि उनके अपने देश में या तो कानून बहुत सख्त है या फिर इलाज बहुत महंगा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बाजार बन गया है जिसके अपने अलग मुद्दे हैं।
ये बाकी सोचने वाली बात है कि तकनीक जो मदद के लिए बनी है वो भी कैसे असमानता पैदा कर सकती है। और परिवार की बात करें तो क्या ये तकनीकें परिवार की हमारी समझ को भी बदल रही हैं?
निश्चित रूप से, ये किताब का एक और केंद्रीय विषय है। देखिए, डोनर गैमेट्स मतलब जब स्पर्म या एग किसी तीसरे व्यक्ति से लिया जाता है।
हाँ।
और सरोगेसी जब कोई और महिला गर्भधारण करती है। ये चीजें हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि आखिर माता पिता कौन है।
हाँ, ये सवाल तो उठता है।
क्या वो जिसका DNA है, या वो जिसने जन्म दिया, या फिर वो जिसने बच्चे को पाला पोसा? ये तकनीकें परिवार की जो हमारी पारंपरिक परिभाषाएं हैं ना, उनको सीधी चुनौती देती हैं।
और इसमें LGBTQ+ जोड़ों के लिए भी नई संभावनाएं खुलती होंगी, है ना?
या अकेले लोग। लेकिन साथ ही ड्रकर ये भी दिखाती हैं कि कैसे ये तकनीकें माँ बनने के सामाजिक दबाव को और बढ़ा भी सकती हैं।
अच्छा, कैसे?
मतलब अगर तकनीक मौजूद है तो शायद समाज की उम्मीदें बढ़ जाती हैं कि हर किसी को माँ बनना ही चाहिए, और कैसे इन उपचारों का ज्यादातर बोझ शारीरिक और भावनात्मक अक्सर महिलाओं को ही उठाना पड़ता है।
हाँ, ये तो है।
भले ही समस्या पुरुष साथी में हो, इसे ड्रकर प्रजनन श्रम कहती हैं।
तकनीक के भविष्य के बारे में भी किताब में कुछ है, जैसे आजकल जीन एडिटिंग वगैरह की बहुत बातें होती हैं।
हाँ बिल्कुल, किताब भविष्य की ओर भी देखती है, क्रिस्पर जैसे जीन संशोधन तकनीकों की संभावनाओं और खतरों पर भी बात होती है। क्या हम इन तकनीकों का इस्तेमाल सिर्फ गंभीर बीमारियों को ठीक करने के लिए करेंगे, या फिर जैसा डर है, डिजाइनर बेबी बनाने की तरफ बढ़ेंगे?
हाँ, ये बहुत बड़ा नैतिक सवाल है।
बिल्कुल, और कृत्रिम गर्भ यानी शरीर के बाहर बच्चे को विकसित करने की कल्पना, ये सब हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम किस हद तक प्रकृति में दखल देना चाहते हैं और इसके क्या नैतिक परिणाम होंगे।
तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो इस किताब से कुछ मुख्य संदेश या सबक क्या निकलते हैं, क्या चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए?
मेरे हिसाब से पहला और सबसे बड़ा सबक ये है कि तकनीक कभी भी न्यूट्रल नहीं होती, तटस्थ नहीं होती।
हाँ।
ये हमेशा सामाजिक मूल्यों, आर्थिक दबावों और राजनीतिक माहौल से प्रभावित होती है, और बदले में समाज को प्रभावित करती है, जिसे हम सामाजिक निर्माण कहते हैं।
दूसरा, वो असमानता का मुद्दा, वो बहुत अहम है। ये तकनीकें वरदान हैं, पर सवाल ये है कि किसके लिए।
सही बात।
तीसरा, वो चिकित्साकरण और तकनीकी अनिवार्यता का विचार,
मतलब जब कोई चीज मेडिकल समस्या बन जाती है तो लगता है कि उसका तकनीकी समाधान होना ही चाहिए।
हाँ, जैसे वो एक मजबूरी बन जाती है।
हाँ, और अगर समाधान है तो उसे इस्तेमाल करना ही चाहिए। ये दबाव लोगों पर बहुत भारी पड़ सकता है, भले ही सफलता की गारंटी ना हो या उसके साइड इफेक्ट्स हों। जैसे किसी ने कह दिया हो, जब हथौड़ा हो तो हर चीज कील नजर आती है।
सही मिसाल है।
चौथा,
ये तकनीकें परिवार और पितृत्व की हमारी समझ को मौलिक रूप से बदल रही हैं। अब परिवार का मतलब सिर्फ खून के रिश्ते से कहीं ज्यादा हो गया है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि रिश्ते बनते कैसे हैं, उनका आधार क्या है।
और पांचवा क्या था?
और पांचवा, जेंडर का पहलू। इन तकनीकों का अनुभव पुरुषों और महिलाओं के लिए अक्सर बहुत अलग होता है, और ज्यादातर शारीरिक और भावनात्मक प्रजनन श्रम महिलाओं के हिस्से आता है। ये जानना भी जरूरी है।
किताब में जरूर कुछ ऐसी बातें होंगी जो हमें लंबे समय तक याद रहें। कुछ ऐसे मुख्य विचार जो आपको खास लगे, कोई कोट जैसा?
हाँ, कई हैं। एक जो मुझे बहुत गहरा लगा वो ये कि प्रजनन तकनीक कभी सिर्फ बच्चे पैदा करने के बारे में नहीं होती, यह परिवार बनाने के बारे में है, और परिवार बनाने का मतलब है समाज बनाना।
वाह, ये तो वाकई मतलब बहुत बड़ी बात कह दी। निजी फैसलों का सामाजिक असर।
हाँ, और एक और विचार जो असमानता वाले मुद्दे से जुड़ा है, प्रजनन तकनीक तक पहुंच समाज की उन गहरी धारणाओं को उजागर करती है कि कौन प्रजनन का हकदार है और किन शर्तों पर।
ये सीधी चोट करता है। कौन तय करता है कि किसे मदद मिलनी चाहिए और किसे नहीं?
एग्जैक्टली।
ये भी बहुत सटीक है। और एक बात जो मुझे पहले की चर्चा से याद आ रही है, क्या ये तकनीकें हमें असली समस्याओं से भटका तो नहीं रही?
बिल्कुल, ड्रॉकर्स पर भी इशारा करती है। उनका एक विचार कुछ इस तरह है, प्रजनन समस्याओं के तकनीकी समाधान का वादा उन सामाजिक और संरचनात्मक कारकों को अस्पष्ट कर सकता है जो पहली जगह में प्रजनन चुनौतियों में योगदान करते हैं।
मतलब
हम शायद IVF पर इतना ध्यान दे रहे हैं कि हम उन वजहों को भूल रहे हैं जिनसे बांझपन बढ़ रहा है, जैसे प्रदूषण, तनाव, देरी से शादी या खराब लाइफस्टाइल।
हाँ, रूट कॉज पर ध्यान नहीं जा रहा।
बिल्कुल, हमें सिर्फ इलाज नहीं, रोकथाम पर भी सोचना होगा।
और आखिरी, परिवार की बदलती परिभाषा पर कोई खास विचार?
हाँ, ये कि सहायक प्रजनन तकनीकें हमें परिवार की हमारी पारंपरिक समझ को मौलिक रूप से विघटित करने और पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करती हैं कि वास्तव में एक माता पिता क्या बनाता है। ये तकनीकें हमें बुनियादी सवालों के सामने खड़ा कर देती हैं।
तो ये सब जानने के बाद इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब है? कौन इन विचारों से कुछ सीख सकता है? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है इसका?
देखिए, जो लोग खुद इन तकनीकों के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए ये किताब सिर्फ डॉक्टर की बताई सफलता दर से आगे देखने में मदद कर सकती है। ये उन्हें भावनात्मक, आर्थिक और नैतिक पहलुओं पर सोचने के लिए तैयार करती है, ताकि वो ज्यादा जानकारी के साथ एक इन्फॉर्म्ड फैसला ले सके।
और डॉक्टरों या स्वास्थ्य सलाहकारों के लिए, उनके लिए क्या है इसमें?
उनके लिए ये किताब मरीजों को सिर्फ केस की तरह नहीं, बल्कि एक इंसान की तरह समझने में मदद कर सकती है। ये उन्हें याद दिलाती है कि मरीज सामाजिक दबाव, उम्मीदें, डर, इन सब से गुजर रहे होते हैं। उन्हें ज्यादा संवेदनशील और होलिस्टिक सलाह देने में मदद मिल सकती है।
और जो लोग नीतियां बनाते हैं, पॉलिसी मेकर्स?
हाँ, जरूर। विभिन्न देशों के कानूनों और नियमों का विश्लेषण देखकर वो अपने देश के लिए बेहतर और ज्यादा न्याय संगत नीतियां बना सकते हैं। कैसे तकनीक को बढ़ावा दें, पर साथ ही लोगों की सुरक्षा और बराबरी का भी ध्यान रखें, ये संतुलन साधना बहुत जरूरी है।
और हम जैसे आम लोगों के लिए, जो शायद सीधे तौर पर इन तकनीकों से नहीं जुड़े हैं, उनके लिए क्या टेकअवे है?
हमारे लिए भी ये जरूरी है। ये किताब हमें अखबारों की सनसनीखेज हेडलाइन से आगे जाकर सोचने में मदद करती है। अगली बार जब हम ART या सरोगेसी पर कोई बहस सुने, तो हम ज्यादा जानकारी और सहानुभूति के साथ उसमें हिस्सा ले सकते हैं। और सबसे बढ़कर, ये हमें किसी भी नई तकनीक के बारे में जरूरी सवाल पूछना सिखाती है। इससे किसे फायदा हो रहा है? जोखिम कौन उठा रहा है? इसके अनदेखे सामाजिक परिणाम क्या हो सकते हैं? मतलब क्रिटिकल थिंकिंग।
तो अंत में, आपके लिए इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा सबक क्या रहा? What's your final takeaway?
मेरे लिए सबसे बड़ा सबक इसकी जटिलता है। ये समझना कि फर्टिलिटी टेक्नोलॉजी सिर्फ साइंस लैब की चीज नहीं है, बल्कि ये हमारे समाज, हमारी संस्कृति, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे कानूनों और हमारी निजी जिंदगियों के ताने बाने में इतनी गहराई से बुनी हुई है कि इसे अलग करके देखा ही नहीं जा सकता। सब कुछ जुड़ा हुआ है।
और मेरे लिए सबसे यादगार बात यह है कि ये तकनीकें कितने बुनियादी नैतिक सवाल उठाती हैं, परिवार क्या है, समानता क्या है, इंसान होने का मतलब क्या है, ये तकनीकें हमारी सबसे बड़ी उम्मीदों को, जैसे संतान की चाह पूरी होना,
हाँ,
और हमारे गहरे डरों को, जैसे प्रकृति से खिलवाड़ या असमानता बढ़ना, दोनों को आईना दिखाती हैं। ये सिर्फ विज्ञान नहीं, ये एक तरह से दर्शन भी है।
बिल्कुल, और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है, अगर हम बीमारियां ठीक कर सकते हैं तो क्या कल हम बेहतर गुण वाले बच्चे चुनना चाहेंगे, और उस बेहतरी का पैमाना कौन तय करेगा?
हाँ, ये सवाल शायद इस किताब के दायरे से भी आगे जाते हैं।
हाँ, पर भविष्य की दिशा तय करने के लिए ये सवाल जरूरी हैं।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।